ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यं प्रवरजन्तम् अनुपेत्यपेत्य दायपायनो विरहकातराजुहा पुत्रेति तन्मया तया तरवाभिनेदु तं सर्वभूतं निर्दयं मुनिमानोऽस्मि। यस्वानुभवा किल श्रुतिसार एकम् आद्यात्मदीपम् अतितीर्थतां तमो अन्धम् संसारिणा करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि मुनिमानम्। नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टकी भक्तिरा भवति नैष्टकी भक्तिरा भवति नैष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 10 अध्याय 2 प्रेयर्स बाय डेमिगॉड्स। देवताओं द्वारा प्रार्थना श्लोक श्रृंखला 22। आइए श्लोक में आए शब्दों से परिचित होते हैं। बोर्ड में देखकर आप सब मेरे बाद एक साथ बोलिए। स ईशा जीवन कलो संपारितः वर्तिता यः अत्यंत निरसंशितान् देहे मृते तम मनुजा सपन्ति गन्ता तमः तमः अन्दम् तनुमानिना ध्रुवम्। ये कंस द्वारा उच्चारित श्लोक है। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को सुना रहे मथुरा में। सैष जीवन कलो संपरेतो सैष जीवन कलो संपरेतो वर्तेत यो अत्यंत निरसंसितेना वर्तेत यो अत्यंत निरसंसितेना देहे मृतेता मनुजा संपन्ति देहे मृतेता मनुजा संपन्ति गन्ता तमो अन्धं तनुमानिनो ध्रुवम् गन्ता तमो अन्धं तनुमानिनो ध्रुवम् एष जीवन कल संपरेतो वर्तेत यो यत्यंत निरसंसितेना देहे मृतेता मनुजा संपन्ति गन्ता तमो अन्धं तनुमानिनो ध्रुवम् स एष जीवन कलु संपरेतो वर्तेत यो अत्र निरसंसितेना देहे मृतेता मनुजा संपन्ति गन्ता तमन्नं तनुमानिनो ध्रुवम् स एष जीवन वर्ते देहे मृतेता मनुजः संपन्ति गन्ता तमो अन्नं तनु वैष्णवेश माताजी देहे मृतेता मनुजः संपन्ति गन्ता तमो अन्तनुमानिनो सः एषा प ईर्ष्यालु व्यक्ति जीवन जीवित रहते हुए कलो भी संप्रेतः मृत है वर्तते जीवित रह रहा है यह जो अत्यंत अति अधिक। जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गोनीताय की। निरसंसितेन बोलिए, निरसंसितेन क्रूर कर्मों द्वारा देहे शरीर होने पर मृत्यु समाप्त हो जाता है। तमा उसको मनुजा सारे मनुष्य सपंती निंदा करते हैं। गंता जाएगा तमह तमह अंदम नारकीय जीवन को तनु मानिना देहात्म बोध वाले व्यक्ति के ध्रुवम कोई संदेह नहीं। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणा अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड मोस्ट मर्सीफुल एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है क्योंकि उसके जीवित रहते हुए या उसकी मृत्यु के बाद भी हर कोई उसकी निंदा करता है। देहात्मा बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंधतम नरक को भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कौन कह रहा है, ये कौन सोच रहा है, कंस सोच रहा है, कितना बुद्धिमान है कंस। यानी कि उस समय का सबसे थर्ड क्लास आदमी इतना बुद्धिमान है, आज का फर्स्ट क्लास आदमी भी इतना नहीं सोचता है। मतलब सिगरेट पिए तो क्या होता है, स्टाइल है आज का। इतना थर्ड क्लास आदमी उस टाइम का सोच रहा है कि नर्क में जाएंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्लास आदमी भी ऐसा नहीं सोचता होगा। तो यह है दर्पण, शास्त्र एक दर्पण है, इसे हम देख सकते हैं हम कहां है या मेरा चेहरा कैसा है। प्रभुजियों को तो दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि वो सुंदर हैं, उनको मालूम है वो सुंदर है। माताएं दर्पण में देखते रहते हैं, समय घंटे घंटे लगा देते हैं, थोड़ा सा भी यहां वहां लग जाता है तो उसको साफ कर देते हैं। दर्पण में वास्तविक वर्तमान सच्चाई को पेश किया जाता है। फोटो तो फोटो है, चाहे वो 25 साल पहले का वो भूतकाल है या 5 मिनट पहले का वो भूतकाल है। वर्तमान वर्तमान को पेश करता है ये दर्पण। तो हमारा सौंदर्य को और निहारने के लिए और कुछ कमी है तो तुरंत हम इसे दूर करते हैं। एक बार दर्पण में देख लिया कि यहाँ पे कुछ लग गया है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद तुरंत साफ कर देते हैं या वैसे ही पड़ा रहता है, तुरंत साफ कर देते हैं। ये दर्पण का काम है। ये वर्तमान सच्चाई को पेश कराता है। तो इससे हमें पता लगता है कि कंस का क्या उस समय का थर्ड क्लास आदमी कैसा है और आज का फर्स्ट क्लास आदमी कैसे हैं। वो नरक के बारे में जानता है, वो ये भी कहता है इस प्रकार का जो कलु यानी कि इस प्रकार के बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जीते जी निंदनीय है और मरने के बाद भी इसको निंदा करें और तो और वो नरक भी जाएगा। ये उस टाइम का 5000 वर्ष पहले का थर्ड क्लास आदमी है कंस, उसका विचार है। तो आज का हमारा परिस्थिति कितना भयावर है, मैं भक्तों का नहीं समाज का परिस्थिति के बारे में, कितना भयावर है। इसका अर्थ यह है कि हम भक्तों को बहुत ही सतर्क होकर चैतन्य महाप्रभु के इस वाक्य पर जीवन को समर्पित करके लग जाना चाहिए। भारत भूमि जन्म हो लो, मनुष्य जन्म हो लो जात, जन्म सार्थक करी है ना, करो परोपकार। तो बहुत 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 बड़ा जिम्मेवारी चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो देख सकते हैं कितना गिर गया है। तो हमारे ऊपर ये दायित्व है यानी कि हमको बहुत सतर्क होना चाहिए, बहुत अच्छे भक्त बनना है और औरों को इमरजेंसी है ये भक्त बनाना है। तात्पर्य कंस ने विचार, ये कंस के बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कंस ने विचार किया कि यदि वह अपने बहन को मारता है तो जब तक वह जीवित रहेगा तब तक लोग उसकी निंदा करेंगे और मृत्यु के बाद उसे अपने इस क्रूरता के लिए अंततम नरक में जाना पड़ेगा। कहा गया है कि कसाई जैसे क्रूर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह ना तो जिए ना तो मरे। ये प्रभुपाद जी सुंदर छोटा सा उपाख्यान देते हैं। एक साधु आते हैं तो जन साधारण आशीर्वाद आशीर्वाद बोलते हैं। तो एक राजकुमार आते हैं तो राजकुमार को साधु ने आशीर्वाद दिया, आप सदा जीते रहो। फिर एक ब्रह्मचारी आया तो साधु ने बोला मर जाओ। फिर एक वैष्णव आया, उत्तम कुल वैष्णव, आप जियो या मरो दोनों एक समान है। और एक कसाई आ गया तो साधु ने कहा तुम्हारा जीना भी बेकार है मरना भी बेकार है। तो उनका शिष्य सर एकदम खुजलने लगा, समझ में नहीं आ रहा है। एक को आपने कहा कि जीते रहो तो साधु ज्ञान दिया, देखो उनका भूतकाल के अच्छे कर्मों के कारण आज वो राजकुमार बना, ऐश आराम में जी रहा है, खूब भोग रहा है। तो मैंने कहा दीर्घ चिरंजीव बाबा, लंबे जीवन जियो, क्योंकि जो कार्य अब आप कर रहे हो जिस प्रकार से आप भोग भोग रहे हो मरने के बाद नर्क जाओगे, इससे अच्छा है तो आपका लंबा जीवन रहने दो ताकि आप खूब भोगते रहो, मरने के बाद बहुत बुरा दशा होगा। ब्रह्मचारी आ गया तो बोला अरे वाह, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंगल आरती, गुरु पूजा बहुत अच्छा है फर्स्ट क्लास, अभी आपका मन साधन भक्ति में लगवा, अभी मर जाओ। क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन है साधन भक्ति में लगा हुआ है, पता नहीं माया का कैसे प्रकोप प्रभाव हो जाए, यहां से वहां चले जाए फिर वापस जन्मृति जरा व्यधि के चाहिए, अभी मर जाओ, अभी क्योंकि आपका मन लगा हुआ है गुरु की आज्ञा पालन करने, मर जाओ कि भगवत धाम जाओगे। वैष्णव संत आ गए जो कि परमहंस के स्तर पर है, तो उनको बोला अब जियो तो भी आनंद में है और देह त्यागने के बाद भी भगवान की सेवा में आनंद में रहोगे। और कसाई जब आया, कसाई का जीवन इतना नारकीय है, इतना खराब है कि इतने वो वध कर रहा है जानवरों का, मरने के बाद तो उसका जीवन बहुत ही दुखदायी होगा, जीते जी भी उसका जीवन बहुत दुखदायी है। काला सा एक कमरा रहता है, उसमें छोटे मोटे मुर्गे बकरी रखते हैं, काटते हैं, चीखते चिल्लाते, इतना नारकीय है उसका जीवन। बोले जीवन जीना भी बेकार है, मरना भी बेकार है। इस बात को इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं और कंस के विचारों को थोड़ा पोषण कर रहे हैं। तो ये कंस के विचार का पोषण प्रभुपाद जी तात्पर्य में, जीवित अवस्था में ऐसा क्रूर व्यक्ति अपने को अगले जीवन के लिए नारकीय स्थिति उत्पन्न कराता है, अतएव उसे जीवित नहीं रहना चाहिए, किंतु मरने की भी सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि मृत्यु के बाद अंततम नरक में जाना पड़ेगा। इस तरह वह दोनों तरह से निंदनीय है। इसलिए आत्मा के देहांतरण का ज्ञान होने के कारण कंस ने जानबूझकर देवकी का वध करने से अपने को रोका। इस श्लोक में गंतमो अंधम तनुमानिनो ध्रुवम, ये श्लोक का अंत लाइन, गंत तमो अंधम तनु मानु नाम। तो प्रभुपाद जी इस विषय पर कह रहे हैं, शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनकी विस्तृत जानकारी आवश्यक है। श्रील जीव गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में कहा है, तत्र तनुमानिना पापीन इति देह आत्म बुद्धेव एव पाप विनिवेशो भवति। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं यह शरीर हूं, देह आत्मा बोध में जीता है, वह अपने को इस विचार मात्र के आधार पर पापमय कृतियों में डालता है। जो यह सोचता है कि मैं शरीर हूं, वह पाप करता है। इस विचार के अंतर्गत जीने वाले कोई भी व्यक्ति नरक का भागी समझा जाना चाहिए। अंध गोबीर विसताम तामिसम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानम, ये जो है प्रहलाद महाराज का द्वारा कथन, अभी नरसिंह चतुर्थी आएगा, सब लोग इसका उच्चारण करेंगे। प्रभुपाद जी इसको भी कोट देते हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वितानम। भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, देहात्म बुद्धि वाले, अहम निद्रा भय, अहम निद्रा भय, अहम निद्रा भय। मैं इस जीवन में भी, अगले जीवन में भी, अहम निद्रा भय मैथुन में रस लेता है और एक रस लेता है, जैसे चबाया हुआ गन्ना को एक बार चबाया, रस पाया, फिर से चबाया, फिर रस, फिर से उसका रस खत्म होते जाता है। यह है भौतिक जीवन। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि के स्तर पे जीता है, उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु। तो यह प्रहलाद महाराज का श्लोक, देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति पर अंकुश नहीं लगा पाता, वो अपने इंद्र तृप्ति पर अंकुश नहीं लगा पाता है। जैसे हम लोग यहां पे कथा पे बैठे हैं, यानी कि हम अभी मथुरा जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा घटना कहां हो रही है, मथुरा। बड़ा दूर है मथुरा, और हम बैठे कहाँ पे हैं? शारीरिक अवस्था से, और शारीरिक अवस्था में यहां पे आके बैठ गए हैं, और शरीर आ गया पर मन नहीं आया है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, तो वही हालत हो गया। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, आप लोग मायापुर गए हैं, मायापुर नवदीप धाम, वहां आजकल नौका चलाया जाता है। एक रात की बात है, शादी बाराती निकले थे, एक गांव से दूसरे गांव जाना था, गोद्रुम द्वीप से कुलू द्वीप जाना था। नौका रात हो गई थी, नौका वाले को बुलाया, आओ आओ आओ। नौका वाला मना किया, नहीं रात बहुत हो गई, मैं नहीं आ सकता। तो नौका वाले ने तो बहुत प्रार्थना किए, हाथ जोड़े, नौका वाले ने स्वीकार कर लिया। सब बाराती बैठ गए, नौका वाले ने नौका और अपना घुमाना चालू कर दिया। प्रातःकाल हो गई, सारे बाराती उठ गए, फिर बोले चलो भाई हम गोद्रुम द्वीप से कुलूद्वीप आ गए। पर देखा कि वो लोग गोद्रुम के गोद्रुम में पड़े हुए हैं। तो नौका वाले से पूछा, ये क्या हो गया, आपने इतना नौका इतने बार आपने हाथ को घुमाया और इतना नौका को चलाने का खूब प्रयास किया, फिर भी हम लोग वहीं के वहीं कैसे हैं? तो एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मुंह को धोकर कहा कि अरे नौका तो वो चला रहे रात भर, वो तो सच है, पसीना पसीना से तर तर हो गया, ये भी सच है, पर बात यह है उनका जो लंगर है वो यहीं पे फंसा हुआ है। इसी प्रकार से इस कथा में बताया जाता है कि कंस मथुरा में है, देवकी मथुरा में है, वसुदेव मथुरा में है, और हम शरीर लेके यहां पे तंद्र निद्रा के आनंद लेते रहेंगे तो हमारा मन रूपी लंगर जो है वो तन के आराम में लग चुका है, वो मथुरा कैसे पहुंचेगी? जन्मों जन्मों तक ऐसे कथा में बैठे रहे, ये मन रूपी तंद्रा निद्रा में लगे रहने के कारण यहीं पे कितना भी प्रयास करे यहीं पे पड़े रहेंगे। फिर हम गाएंगे, बड़ी दूर नगरी कनाई तेरी गोकुल नगरी, हम यहीं के यहीं पे रहेंगे। कितने भी जन्म हो जाए ऐसे तंद्रा निंद्रा में अगर मन लग गया, मन रूपी लंगर लग गया, तो इसलिए कहा जाता है जपा करते वक्त या श्रीमद् भागवत कक्ष में हमको बहुत सतर्क होना चाहिए। साक्षात यशोदा नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर यहां पे विराजमान है, भक्ति रसामृत सिंधु के पट्टू, भक्ति शास्त्री के पंडितगण जानते हैं, और आप लोग है भी जानते हैं कि विग्रह के सामने तंद्र निद्रा लेने से अपराध माना जाता है, सेवा अपराध माना जाता है, और भागवत एक सेवा है, इसमें भी सतर्क होना चाहिए। नहीं तो कितना भी हम लंगर उठाया नहीं तो बड़ी दूर नगरी कनाई फिर गोकुल नगरी, हमको मथुरा जाना है, तो आइए इस तात्पर्य पे थोड़ा और जोर डालते, बड़ा तात्पर्य है, इसलिए आप लोग भाव विभोर मत हो जाइए, मूर्छित अवस्था को प्राप्त मत कीजिए, और अच्छे अच्छे भाते आपको यहाँ पे श्रवण कराना है आपको। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, क्या आत्म बुद्धि वाला व्यक्ति अपने इंद्र तृप्ति रूपी अंकुश को उठा नहीं पाता है, उसका मन रूपी लंगर जो है देह में ही फंसा हुआ रहता है, उठता नहीं है। प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति खाने पीने आनंद मनाने तथा इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, अगर उसे बोले कि खाने पीने के लिए रात भर जगना है तो वो रात भर जगा रहेगा, पर बोलेंगे कि कल या पूरा सुबह भी जागना है, आपको 50 करोड़ देंगे, तो जागृत रहेगा। पर बोलेगा कल एकादशी है, मंगल आरती में आओ, तो ठीक 8 बजे आएगा। और बोलेगा नहीं यार, 12 बजे तक के बाद आऊँगा, दोपहर 12 बजे। तो ये खाने पीने वाले आनंद में का वर्णन आता है। उसे इसका ज्ञान नहीं रहता है कि आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में होता है। ऐसा व्यक्ति जो चाहता है, जो सोचता है, वही करता है, जिसके कारण प्रकृति के नियमों के अनुसार वह विभिन्न भौतिक शरीरों में घोर कष्ट भोगता है। यावत् क्रियस्तावदिदं मनो वे कर्मात्मकम् येन शरीरबन्धः। ऋषभदेव महाराज का यह सुंदर श्लोक का वर्णन हो रहा है, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 5वां श्लोक, 5, 5, 5। देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य कर्म बंधन अर्थात कर्म द्वारा बद्ध रहता है, और जब तक उसका मन कर्म में लीन रहता है तब तक उसे शरीर ग्रहण करना पड़ता है। इसे शरीर बंद कष्ट का कारण क्लेश माना जाता है। न साधु मन्ये एत आत्मनो अयम असन्नपि क्लेशदा अस देह। अगर कोई कहे कि ठीक है शरीर बार 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 मिल रहा है, तो आपको क्या परेशानी है, आपको क्या पड़ी है, क्यों बार बार कह रहे हो, क्यों बार बार कह रहे हो भौतिक शरीर भौतिक शरीर, आपका क्या जाता है। प्रभुपाद जी एक प्रवचन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति क्लास के बाद उठ के खड़ा हुआ, प्रभुपाद जी बार बार कर रहे हैं कुत्ते बिल्ली जैसे जीवन नरक है, कुत्ते जैसे बिल्ली। तो वो व्यक्ति खड़ा हो गया, बोला कि मुझे कुत्ते बिल्ली बनना है। तो प्रभुपाद जी क्या कहा, मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। अभी प्रभुपाद जी क्या कर सकते हैं, वो व्यक्ति, कारण यह है कि शास्त्र कहता है, साधु कहता है कि ऐसा जीवन में बहुत दुख है, जन्म का और मृत्यु का और बुढ़ापा और बीमारी का। यद्यपि शरीर क्षणभंगुर है, अनेक प्रकार के कष्ट प्रदान करता रहता है, किंतु दुर्भाग्यवश मानव सभ्यता तनुमानी अर्थात देहात्म बुद्धि पर अत्यधिक आश्रित है, जिसमें मनुष्य सोचता है कि मैं अमुक राष्ट्र से संबंध हूं, मैं इस संप्रदाय का हूं, मैं इस समुदाय का हूं और मैं उस समुदाय का हूं आदि आदि। हमें से हर एक के अपने अपने विचार हैं, और हम व्यक्तिगत सामाजिक जातिगत तथा राष्ट्रगत रूप से कर्म बंधन के पाप में जटिलताओं में बंधते जा रहे हैं। शरीर में के निर्वाह हेतु लोग अन्य शरीरों को वध करते हैं, अन्य शरीरों को वध करते हैं और कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं तनुमानी पापी होते हैं, जो शब्द है तनुमानी वो पापी होते हैं। लास्ट लाइन, ऐसे पापियों को अंतिम गंतव्य अंततम नरक होता है, गंत अंततमो। लास्ट लाइन के पहले दो लाइन शब्द, वह सबसे बड़ा पापी है और अत्यधिक जीवन के महत्व को नहीं समझ सकता है। भगवद गीता में 16वें अध्याय के 19 और 20 श्लोक में भगवान कहते हैं, तानहम कहते हैं कि बहुत बड़ा तात्पर्य, आप लोग भाव विभोर तो नहीं हो गए, थोड़ा धैर्य रखिए क्योंकि अब बहुत ही स्पेशल चीज आ रहा है, इससे आप पूरी तरह से भाव विभोर हो जाओ, क्लास के बाद इसी पे मंथन करते रहो और इसका आनंद लेते रहिए। तो कहते तानहम द्विषता क्रूरम संसारेषु नरादम क्षिप्याम अजस्रम अशुभम आशुर आशुर एव योनिषु आसुरम योनि आपन दु जन्मानि जन्मानि माम आप्राप्य एव कौन्तेया ततो यान्ति अंधम गतिम। भगवद गीता का श्लोक है, प्रभुपाद जी कहते हैं, इसके अनुवाद दे रहे हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा उद्यमी हैं, जो पुरुषों में अदम है, उन्हें मैं यानी कि भगवान मैं इस भवसागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डाल देता हूं। ऐसे व्यक्ति आसुरी जीवन में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए मेरे पास कभी नहीं पहुंच पाता है। कहां नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि भगवान के धाम को कभी पहुंच पाएगा। ऐसे पापी लोग, ऐसे लोग क्रमशः अत्यंत निंदनीय स्थिति में नीचे चले जाते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, यह मानव जीवन एक वरदान है जो अनेकों अनेक जन्मों के बाद मिला है, जिसके मूल्य को मनुष्य को समझना चाहिए। अतः मनुष्य को तनुमानी अर्थात देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की। ठीक 8:55 हो गया। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गोद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये परम मंगल श्रीमद् भागवतम महापुराण परमहंस संहिता है, वैष्णव भक्तों का परम धन है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज जी गंगा के तट हरिद्वार में उन परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज वास्तव में मथुरा पहुंच गए हैं और ये दृश्य को देख रहे हैं और इसे बता रहे हैं। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज मथुरा गए हैं और कंस के क्रूर कार्यों का दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम सबको मथुरा पहुंचकर कंस की क्रूरता को देखना चाहिए। कारागार में भगवान का दिव्य जन्म का वर्णन किया जा रहा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य है। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान का जन्म से पहले ही भगवान ने ऐसा व्यवस्था बनाया है। सारे देवी देवताओं से कह चुके हैं कि आप लोग मेरे आगमन का तैयारी कीजिए। भगवान का दिव्य जन्म है और देवकी का पूरा शरीर का सौंदर्य का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि इतना सुंदर लग रही थी कि कंस भी सोच रहा था इतना सुंदर तो भगवान है, जरूर भगवान इनके अंदर है, तो इनका सौंदर्य बढ़ गया है। इतना तेज ये पूरा कारागार अलोकित हो गया है। भगवान के अंदर वो तेज है, जरूर वो भगवान अंदर है। अब विचार करके देखें हम, कंस एक क्रूर व्यक्ति है। कंस उग्रसेन का पुत्र है। वास्तव में वो उग्रसेन तो भक्त है पर एक असुर। उनकी मां से संग करते हैं, उग्रसेन की पत्नी से संग करते हैं, उनका पुत्र है ये कंस। कंस का क्रूरता इतना बढ़ गया कि पूरे भारत वर्ष में वे असुरों को छोटे छोटे राज्य दिए थे। उग्रसेन को भी अपने बस में कर लिया था, अपने पिता को भी, और उनके क्रूरता से सभी डरते हैं, सभी डर रहे हैं। पर वही कंस अब भयभीत हो रहे हैं। भगवान अब देवकी के, मेरी बहन के गर्भ में है, वो समझ गया। अब एक विचार करेंगे हम भक्त। भगवान तो कहते हैं कि भक्ति माम अभिजानान्ति, मेरा जानकारी मेरे भक्तों को भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा, तो कंस को कैसे भगवान का जानकारी हुआ, कंस को कैसे भगवान का जानकारी, प्रश्न उठ सकता है। ठीक है, देवकी का सौंदर्य बढ़ गया है, ठीक है देवकी के शरीर से तेज आ रहा है, तो कंस कैसे इस निर्णय में आ रहा है कि वो भगवान अब इनके गर्भ में है, कैसे? क्या कंस ने भक्ति किया है? क्या भगवान का वाणी झूठा है? नहीं, भगवान का वाणी झूठा नहीं है, झूठा नहीं था और झूठा कभी नहीं होगा। कंस ने भक्ति किया, कैसे किया? उन्होंने अपनी बहन देवकी को, जो कि वैष्णवी है, भगवान की मां बनने वाली है, और वैष्णव वसुदेव को रथ पे आरूढ़ कराया और उनका रथ को चलाया। यह हो गया वैष्णव सेवा। इसके फलस्वरूप थोड़ा सा भक्ति हो गया और इसके फलस्वरूप उनको थोड़ा सा ज्ञान मिला, थोड़ा सा ज्ञान मिला, थोड़ा सा भक्ति हुआ तो उसको पता लग गया कि भगवान है। यह है भक्ति का प्रभाव कि थोड़ा सा भी करे तो भगवान का पूरा जानकारी मिलता है, और ज्यादा करे। पर कंस ने जैसे ही वैष्णव सेवा किया सारे देवता कांपने लग गए। अगर यह वैष्णव सेवा करता रहेगा तो भगवान उनके ऋणी हो जाएंगे, तो तुरंत अदृश्य होकर के, हे मूर्ख कंस, जिस स्त्री का आप सेवा कर रहे हो उसका आठवां गर्भ आपको मार देगा, आपका मृत्यु का कारण है। तो कंस अपना वैष्णव सेवा छोड़कर वैष्णव अपराध करने लग गया, और जैसे ही वैष्णव अपराध किया तो उसका ज्ञान जो था कि कृष्ण मेरा भी पालन करेगा, कृष्ण मेरा सुहृद है, वो ज्ञान आया नहीं, सारा ज्ञान नष्ट हो गया। तो वैष्णव सेवा वैष्णव अपराध दोनों देखा जाता है। अशांत है कंस, अशांत है, और इस संसार में लोग अशांत है, और भगवान कहते हैं कि शांति का एक ही सूत्र है, और ये सूत्र यह है कि भगवान भोगता है, भगवान भगवान परम ईश्वर है, भगवान भोगता है और भगवान सबके मालिक है और सबके सुहृद है, और जो इस बात को जानकारी रखे वही वही शांति को प्राप्त करेगा। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मृच्छति। कंस कैसे शांति को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो कृष्ण को अपना सुहृद नहीं मान रहा है। कंस अपने कृष्ण को सुहृद नहीं मान रहा है तो कैसे शांति को प्राप्त। वो शांति ने वो अशांति वो अशांत हो गया, भयभीत हो गया, भयभीत है कंस। कंस को भगवान ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि भगवान गीता में भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश बोलते कि मैं ज्ञान नहीं दूं, मैं इन लोगों को ज्ञान नहीं दूंगा, प्रकाश नहीं दूंगा। योग माया समृत मूढ़ो नाभि जानान्ति लोकम अजम अव्ययम, मेरा अव्यय नहीं होगा, नहीं जानते, क्योंकि कंस दुष्कृत है। तो ऐसे दुष्कृतों को ज्ञान भगवान देते हैं, ना हम प्रकाश ज्ञान नहीं देंगे। बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान। तो कंस आगे जाके कह रहा है कि देखो देखो ऐसा क्रूर कार्य अगर मैं करूंगा, जीते जी मेरा जीवन नरक है और मरने के बाद भी मैं नरक जाऊंगा। चाणक्य पंडित अपने जीवन अपने नीति में कहते हैं वो जीवन जिस जिसमें धर्म नहीं है वो व्यक्ति जीते जी मरा हुआ है, और वो व्यक्ति जो भक्ति करता है धर्म का पालन करता है वो वास्तविक जीवन जी रहा है, वो जीते जी भी जी रहा है और मरने के बाद भी जिएगा। माता देवति कर्दम मुनि से कहती है कि आप जैसे संत मेरे जीवन साथी बने पर मैंने आपका संग का लाभ नहीं लिया। जो व्यक्ति वैष्णव संग का लाभ नहीं लेता है वो जीते जी मरा हुआ व्यक्ति है। वो धर्म वो कार्य वो कर्म जो धर्म के ओर नहीं लेके जाता है, और वो कर्म जो वैराग्य के ओर लेके नहीं जाता है, और वो वैराग्य जो भगवान की सेवा के ओर नहीं लेके जाता है, वो सब जो है हमें नर्क के ओर लेके जाएगा, वो कार्य हमें नर्क के ओर लेके जाएगा। और वो व्यक्ति जो भगवान की सेवा में नहीं रहता है वो जीते जी मरा हुआ व्यक्ति है। वो कहते हैं जीवन अपी मृत्यु ही सह, जीते जी वो मरा हुआ व्यक्ति है। जिस व्यक्ति का कर्म या क्रिया धर्म के ओर लेके नहीं जाता है, जिसका धर्म वैराग्य के ओर, जिसका वैराग्य भगवान की सेवा के ओर नहीं लेके आता, अर्थात जो वैष्णव सेवा या भगवान की सेवा में नहीं है, वो जीते जी चाहे चर्च गेट से विरार विरार से चर्च गेट या वीटी से पनवेल या पनवेल से वीटी कितना भी घूमे, वो जीते जी मुर्दा है। मैं नहीं कर रहा हूं ये देवकी क्या देहूति का कहना है, सांस तो ले रहा है पर जीते जी मुर्दा है। ब्रीफ केस ले या सूट केस ले वो जीते जी मुर्दा है, क्योंकि जीवन वो जीवन है जिसमें आनंद है, और आनंद तो तब मिलता है जब हम भगवान का सेवा करते हैं। और वो जीना भी क्या जीना जिसमें आनंद नहीं है, उसे तो मर जाना अच्छा है, इसलिए लोग बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, कष्ट में, मैं मरना चाहता हूँ। क्यों? जीवन में आनंद नहीं है, रस नहीं है। तो असली जीवन तब है जब हम भगवान का भक्ति करते हैं। यहाँ पे कंस जो कि एकदम दुष्कृत है, नगण्य, तुच्छ, निकृष्ट, थर्ड क्लास व्यक्ति है, वो कह रहा है कि ऐसा क्रूर कार्य अगर मैं करूंगा, जो व्यक्ति गर्भवती है उसका मैं वध करूंगा, तो लोग कहेंगे कि वो एक मर्डर नहीं दो मर्डर किया। पहला तो बहुत बड़ा बदमाश है कंस, वो डर गया। वास्तव में जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी तो जिए उनके साथ हजारों जिए, और प्रभुपाद जी जब अपना लीला संपन्न किए, लाखों के संख्या में लोग प्रभुपाद जी के इस आश्रय को ग्रहण करके सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी जीते जी भी जी रहे हैं थे, और लीला संपन्न करने के बाद भी, तिरुभाव के बाद भी, आज भी हम सब के बीच में जी रहे हैं। वही जीवन जीवन है। एक पत्नी अपने पति से कहा, बहुत ही दुष्ट पति था, ठीक है आपके मृत्यु के बाद आपके लिए कौन रोएगा? मैं तो रोऊंगी क्योंकि लोग देखेंगे, मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे रोना नहीं आएगा, फिर भी लोग देखेंगे, बोले कैसे स्त्री है, पति मर गई फिर भी रो गए। आपके पीछे, आपके मरने के बाद ऐसा बोलना नहीं चाहिए पत्नी को, फिर भी इतना उसको सता दिया कि बोला कि ठीक है आपके मृत्यु के बाद आपके लिए कौन रोएगा? मैं तो जरूर रोएंगी, मेरे अलावा और कौन रोएगा? तो बोला चिंता मत करो, चिंता मत करो देवी, आप तो रोओगी, जरूर रोएगी, और आपके साथ और बहुत लोग रोएंगे। तो बोला कौन? जिस मकान में हम रह रहे हैं पिछले 11 साल से, मैंने, वो जरूर रोएगा। जिस किराने वाले से हम सामान लेते हैं, उसको पिछले 5 साल से कुछ किराया नहीं दिया, वो जरूर रोएगा। और ऐसे बहुत सारे लाइन में है, वो आके रोएंगे, ये गया तो हमारे पैसे कहाँ गए? तो चाने के पंडित ये नहीं कर रहे कि ऐसा नहीं कि जब भी कोई सज्जन व्यक्ति जीता है और अपना लीला संपन्न करके तिरबा होता है, तो भक्तों को दुख आते है, रोते हैं कि हमारे बीच में से एक अच्छा सज्जन वैष्णव चला गया, पर उनको खुश भी है कि वो भगवत धाम गया नहीं। और वो लोग याद ऐसा नहीं करे कि वो हमारा पैसा लेके गया, नहीं, याद इसलिए करना चाहिए कि इन्होंने क्या अच्छे अच्छे बातें बताए, हमारे जीवन में उन्होंने क्या क्या सुंदर कार्य किए, उनके कारण आज हमारा जीवन सार्थक हो गया, ऐसे याद करना चाहिए, ना कि हम उनका पैसा ले ले और छुमंतर हो जाए। तो इस प्रकार से वास्तविक जीवन तो तब है जब हम भगवान के सेवा में लगे रहेंगे, और उस सेवा के माध्यम से औरों को सेवा में लगाएंगे, तो हम भी खुश आनंद को प्राप्त करेंगे, औरों को भी आनंद देंगे। और ऐसा अगर जीवन रहेगा तो जीते जी हम जिएंगे, और देह त्यागने के बाद और लोग भी वास्तव में हमें याद करेंगे और हमारे जीवन का गुणगान करेंगे। ऐसा नहीं है तो कंस जो कह रहा है वो सच है, और कंस ये भी कह रहा है वो जीते जी उनका जीवन नारक है, और मरने के बाद एक नरक है, तमा अंध तामिश्र, जिसका वर्णन पंचम स्कंद में आता है, बहुत ही भयावह नरक, जिसका वर्णन ईशोपनिषद में भी आता है। तो वो भयावह नरक जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए है। तो हमें चाहिए जीते जी भगवान का सेवा में आनंद लें, और औरों को सेवा में युक्त करके उनको आनंद प्रदान करें, तब जीते जी हम वास्तव में सभी हमें याद करेंगे, और देह त्यागने के बाद भी हमें याद करेंगे। ऐसे सज्जन व्यक्ति अब कहाँ है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, जयानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर, एका काले को तागिला गोरा न करवा, है ना। कहा मोर सनातन, और क्या है, कहा मोर रूप कहा सनातन। तो इस प्रकार से याद करेंगे, रोएंगे भी याद करेंगे, क्योंकि हमने कुछ अच्छा किया, वो जीना जीना है। तो यही जीवन का आशा रखते हुए वाणी को विराम देता हूं। श्री राधा गिरधर जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन को वास्तविक सुंदर जीवन बनाए, हम जीवन को सार्थक करते हुए औरों को जीवन को सार्थक करने में लग जाए। हरे कृष्णा। एकाध प्रश्न किसी का तो ठीक है, नहीं तो सरल प्रवचन है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की पांचा कल्पत्र अच्छा कृपा सिंधु अच्छा पतिता नाम पावने वैष्णव प्रभु नमो नमः।